प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रिस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही, ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को कल 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
आज दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेनदेन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकट, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। भारत ने कल भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। पेचिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ, साथ ही सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों के जरिए सीमा व्यापार सहित लोगों के बीच बढ़ते संपर्क पर संतोष व्यक्त किया। इससे पहले 2 दिवसीय चीन यात्रा के दौरान श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने H1N1 इन्फ्लुएंजा, डेंगू और मलेरिया की स्थिति को लेकर अंतरविभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बीमारी की स्थिति, निगरानी, अस्पतालों की तैयारियों, दवाओं और जांच सुविधाओं की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने MCD, NDMC और दिल्ली छावनी को स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास एंटी लार्वा अभियान छिड़काव और छिड़काव तेज करने के निर्देश दिए। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।